इनको तो उन्होंने कात्यायनी ने कहा था उनकी पूजा की इतने प्रसन्न होकर, किंतु आप लोगों के लिए तो मैंने कहा नहीं था, तो उसके लिए कह रहे हैं। यद्यपि वो कारण नहीं है, नहीं रहने पर भी हमारी आत्मा का तुम नित्य प्रिय हो, विवाह से उस स्तुति का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे ईश्वर, तुम अपनी इच्छा के विषय में स्वतंत्र स्वतंत्र हो, तुम्हारी जो इच्छा है वही कर सकते हैं आप। परंतु बाल्यकाल से जो हमारी आपके चरणों में जो प्रीति है उसको आप छेदन मत कीजिए। जब कोई फलवती लता बीज लगाने के बाद में बड़ी हो जाती है, अब उसमें फूल लग गया है और फल लगने वाला है, उस समय उसे काट दे तो बुद्धिमान नहीं कहा जाता। इसलिए और भी देखो, इसका कारण तुम ही हो, आशा लता का रोपण करने वाले, उसको बढ़ाने वाले तुम ही हो, इसलिए उसको अब फलवती होने वाली है, उसको काटना ठीक नहीं। अर्थात चक्षुराग प्रथम चित्तासंगस्ततो अथ संकल्प, ये कठोर वाक्य रूपी कुठार के द्वारा उसका छेदन करना आपके लिए कुछ है। ये पति को छोड़ देना इसने जो कहा है,
आगे नेत्र द्वारा समझ लो, तार पर से चित्त संकल्प
तो करें
कि
यहाँ पर पति इत्यादि को छोड़ना ही पार्थिव भाव का, इसलिए ऐसे गोपियों की अधीन रह करके ही हम आपकी सेवा करने चाहिए चाहता हूँ, ऐसी उनकी अभिलाषा भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं। राधा जी का चरण, उनमें राधा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके चरणों की सेवा उनको चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी पुनः उसके बाद में कह रहे हैं, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाशित बिंदाग्नि असंभाषित भाव गंभीर चित्ता कुदर्श्याम सिंधो रसाश्चाव। राधा पदम भोज रेणु नहीं आराधिले तहां पदांक पुत भजना भजिले ना से दिले राधा गंभीर भाव भक्त श्याम सिंह रसे किसे। जिनको आसक्ति कोई हो गई है उनके भक्ति विनोद ठाकुर ये रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी उनका यह श्लोक लेकर के बतला है, राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा एकांतिक सेवा की वासना, ये रूपानुग का प्रधान ये भाव। राधा जी की सेवा कैसे मिलेगी, रागानुगा भक्त कैसे पाएंगे, उसके लिए संग की जरूरत, भावना की जरूरत, बिना संग के आशा नहीं। कैसा संग होना चाहिए उसके लिए बतला रहे, जिन्होंने कभी भी अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु, जिन लोगों ने श्रीमती राधिका के चरणों की रेणु की सेवा जिन्होंने आज तक कभी नहीं की, उनके संग से नहीं हुई। जिनके चरणों की सेवा स्वयं जगत आराध्य समस्त ईश्वरों के ईश्वर भी कृष्ण स्वयं करते हैं, लालसा रखते हैं, इसलिए औरों की तो बात क्या, अनाराध्य जिसने कभी भी राधिका जी के चरणों की उपासना नहीं की, और जिन्होंने अनाशित राधा बिंदा कभी तक प्रदान किया, और राधा जी के चरण वृंदावन में चारों तरफ से उनके चरण चिन्ह और उनकी धूलि है, तो जिन्होंने ऐसे रसमय वृंदावन धाम की सेवा नहीं, उन्होंने आश्रय नहीं किया, हमने तो रसिक वैष्णव का संग नहीं किया, और रसिक स्थान जो वृंदावन है उसमें निवास नहीं किया है। यहाँ पर आप क्या देखे सब समय चरण कमल वहां पर कहाँ है?
सेवा
कुंज में। कहाँ है? श्रृंगार वर्ग में। ठीक, यहाँ पर राश हुआ
बंसी
भट्ट हुआ, दान गली से मान गली से होकर के इधर उधर गई है, जहाँ कहेंगे सर्वत्र ही। और यहाँ पर वृंदावन कहने से केवल पंचकोशी वृंदावन नहीं, यहाँ पर वृंदावन से 84 कोस को ही समझो, विशेष करके नंदगांव, बरसाना, जावट, संकेत, जितने भी रस स्थलियां हैं उस पार में ढंडीर बन इत्यादि है, उस सब को समझना। इन्होंने इन स्थानों को आश्रय नहीं लिया, यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं हुआ तो मन के द्वारा भी उन चीजों का आश्रय करें। यदि शरीर के द्वारा वृंदावन में, राधाकुंड में, श्यामकुंड में, विराज गोवर्धन में नहीं रह सकता है, वो अंततः मन के द्वारा भी वहां पर है। यदि ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं यदि उसने किया और ऐसे धाम का आश्रय नहीं लिया, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता, भाव के जो गंभीर राधिका जी के चरण, जैसे रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण से लेकर के नीचे भक्ति विनोद ठाकुर, गुरुपाद पद्म इत्यादि का जो कि इस विषय में है। तद्भाव गंभीर चित्ताना, ऐसे भाव को ग्रहण करने वाले, जैसे महाप्रभु के भाव को रूप गोस्वामी ने भाव किया, समझ लिया, ऐसे ऐसे गंभीर चित्त वाले जो हैं, रूप गोस्वामी के संबंध में ऐसा कहा जाता है, कई भागवत हो रही थी और वहां पर सभी लोग गिरा का जब भाव आया, सब लोग कोई गिर रहे हैं, कोई शिशक रहे हैं, कोई नाक से गिर रहा है, कुछ मुख से लाल गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई एकदम मूर्छित हो गए हैं, कोई कुछ, और उनको स्वामी चुपचाप आंखें खोले हुए और ऐसे वहां पर किसी ने देखा जी ये रूप गोस्वामी को तो सबसे पहले ये भाव आता है, तो इनको आज भाव क्यों नहीं आया? तो लोगों ने कहा जो जीवित हैं कि मरे हैं देखो, तो देखा जी आंखें बंद नहीं हो रही हैं और ऐसे देख रहे हैं और चुपचाप, तो देखा रुई लगा करके थोड़ा सा देखा इतने हाथ में तो खुल गया। यहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है, वहां पर मछली उस पानी को
गंदा
करकट करके गंदा कर सकती है, अथवा अनंत पानी में बड़ी बड़ी फेल इत्यादि मछलियां भी पानी में को गंदा कैसे कर सकती है? इसलिए यदि साधारण साधक है तो उनको तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो थोड़े से पानी में, जहां पर अराध समुद्र है वहां, और उसमें भक्ति गोस्वामी सिंधु में जहाँ वो विचरण करें रूप गोस्वामी के हृदय में ये सब भाव दिखा दिखाया एकदम जैसे। तो ऐसे गंभीर चित्त वाले यदि कोई भक्त हो, ऐसे लोगों के संग में ही राधिका जी के चरण की उपासना न था दूसरों के लिए नहीं। कुत श्याम सिंधु रसाश्चा होगा, वो कैसे इन तीनों चीजों के अतिरिक्त या तो वृंदावन धाम का आश्रय किया जाए, वो भी वैष्णवों के संग में और ऐसे रसिक भक्तों के संग में, तब कहीं जाकर के वैसा भाव नहीं। अन्यथा श्याम सिंधु, श्याम सिंधु माने क्या है? श्याम के प्रति जो प्रीति रूपी सिंधु है उसमें नहीं अवगाहन, इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत। राधा पदम भेज रेणु नहीं आराधना, जिन्होंने आराधना नहीं की और जिन्होंने राधा जी के पदांक को ब्रज का आश्रय नहीं लिया, ना से राधा गंभीर भाव, राधा जी के गंभीर भाव जिन भक्तों के हृदय में, रसिक भक्तों के, उनकी आराधना नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, तो श्याम सिंधु के रस में हम कैसे अवगाहन कर सकते हैं? ये संभव कर
श्याम के कराए श्याम रस,
राधिका दास अभिमान जैसा गोस्वामी का अभिमान परित्यज्य प्राप्त बपुरादेशु श्री कृष्ण कृपया गोपी देहे भजे वशाम्यह राधिका अनुचरी भूत्वा पार्थिय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्यां करोम्यह। ये गोस्वामी लोग करें भक्ति विनोद ठाकुर जी, यद्यपि हम लोग इसके अधिकारी नहीं, कभी भविष्य में यदि किसी को लोभ हो इसके लिए करें, नहीं तो साधारण लोगों की इसमें रुचि नहीं हो। करें यदि ऐसा कोई चाहता है तो जितने प्रकार के प्राकृत बपु का अभिमान है, प्राकृत शरीर का अभिमान है, मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक का पति हूं, मैं अमुक की स्त्री हूं, ये जितने प्रकार के प्राकृत अभिमान हैं, ये समस्त अभिमानों को छोड़ करके श्री कृष्ण कृपया, कृष्ण की कृपा से ब्रज में गोपी देह के रूप में मैं ब्रज में वास करो वशाम्यह, ये आशा। और राधिका जी की अनुचरी होकर के, उनकी किंकरी होकर के उसी रूप में राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्यां करोम्यह, मैं राधा कृष्ण की उसी रूप में परिचर्या जिस प्रकार से वो लोग करती हैं। फूल देहादि के आत्मबुद्धि परिहर भजन साधन करने के लिए स्थूल शरीर का अभिमान छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और नहीं तो कोई शत्रु होगा, कोई मित्र होगा, यह अवश्यंभावी है। लोगों से शत्रुता होती है और मित्रता होती है, किसलिए? जड़ शरीर के सुख या जड़ अभिलाषा या इसी प्रकार की अभिलाषा स्थूल और सूक्ष्म अभिलाषा के कारण होती है। जितना कुछ वैर विरोध होता है स्थूल और प्राकृत देह के अभिमान से, अप्राकृत देह का अभिमान होने पर कोई प्राकृतिक लालसा रंग नहीं जाएगी। हम जिसको अभी प्राकृत अप्राकृत लालसा कर रहे हैं वो प्राकृत लालसा नहीं भी हो सकती, अधिकांश ऐसा ही होता है। हम जिसको अभी परमार्थिक जिसको समझते हैं, हमारी ये परमार्थिक लालसा है, नहीं भी हो सकती है। उच्च अधिकारियों की दृष्टि में हो सकती है, नहीं आता समझ में। हम हम जिस स्टेज में हैं, हम समझते हैं कि हम परमार्थ में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमारी जितनी भी इच्छाएं ये परमार्थ की हैं। किंतु उत्तम भक्त की दृष्टि में यदि हो तो, अन्यथा हम अभी प्राकृत दृष्टि में रह करके और अपने को अप्राकृत समझ रहे हैं और अपनी इच्छाओं को अप्राकृत समझते हैं, उसमें वैर विरोध रहेगा, वो सब कल्पना है। उस समय जैसे सुखदेव गोस्वामी का किसी से विरोध है कि नहीं है? किसी से विरोध नहीं, उस प्लेटफार्म पर कोई विरोध ही नहीं। इस प्लेटफार्म में, इस अभिमान के प्लेटफार्म में हम लोगों में जब तक कि प्रेम न हो, जब तक कि भाव अवस्था ना आए, तब तक हो सकता। सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा होश था इस प्राकृत जगत का, इसलिए थोड़ा सा कंस को भोज उपांशु इत्यादि, उनका कोई शत्रु है कौन? कृष्ण का शत्रु भी उनका शत्रु है, उनका भी है। किंतु नारद जी को, नारद जी का एकदम कंस से भी मित्रता और दंत वक्र से भी और दुर्योधन से भी सबसे, वो सबको समझते हैं कि कृष्ण लीला का ये सेवा, किसी को वो देखते ही नहीं कि कृष्ण का कोई शत्रु है, वो इस प्लेटफॉर्म, इसलिए उनके गुरु के गुरु हैं, परम गुरु हैं। ये साधारण नारद जी को मत समझना, ऐसे ही महाभागवतों का विचार हो जाता उस प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसा। किंतु मध्यम अधिकारी में यदि ऐसा कोई समझे तो अधिकार के विपरीत कार्य होता है। ऐसा भी, ऐसा जानबूझ करके कल्पना करके नहीं करना चाहिए, जिस स्टेज में है वैसा ही। अभी यदि हम मध्यम अधिकारी में हो करके और नारद गोस्वामी बनना चाहें तो उसमें गलती ये होगी। क्या गलती होगी? बहुत सी गड़बड़ियां होंगी। पहली गलती तो ये होगी, अपने अधिकार का तुम उल्लंघन कर रहे। मध्यम अधिकार का ये है वो तटस्थ नहीं रहेगा। नारद जी एक तरह से तटस्थ होकर के उसको बहुत ऊपर चले जाते हैं। हम लोग यदि हमारे गुरु जी की, वैष्णवों की और भगवान की, शास्त्र की यदि कोई निंदा करता है और हमें क्रोध नहीं होता, हम भी नारद जी जैसे हो जाएंगे, तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी ना। अभी हम लोग ऐसा नहीं हो, अभी गुरु वैष्णव की कोई निंदा करे तो उसकी जीवा को स्तंभन करेंगे, ठोस प्रमाण के आधार पर उसको बंद कर देंगे। और यदि अपने गुरु वैष्णव की निंदा सुन लेते हैं तो इससे भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी बुद्धि हमारी परिपक्व नहीं हुई और नारद जी जैसी बुद्धि नहीं आई है कि व्यास जैसी बुद्धि नहीं आई है, उसके लिए बहुत उन्नत और उन्नति है। इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार में चलना चाहिए। तो इस स्थूल देह में यदि भजन करने की इच्छा है तो क्रमशः मध्यम अधिकार में उत्तम अधिकारियों को या मध्यम अधिकारी जो उन्नत वैष्णव हैं उनके संग में रह करके और उनके अनुगत्य में रह करके अनुशीलन पर अप्रज में रहकर, यदि ऐसा नहीं होगा स्वतंत्र रूप से करेगा है, तो कहां हमारी गलती है, कहां भूल है, क्योंकि ये हम जीवन भर में नहीं समझ सकते। इसलिए भजन उसको करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जीव गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी किया, या विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इत्यादि का देखा जाता है, नरोत्तम ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर जी का देखा जाता जी महाराज जी के अनुगत में रहते हैं, प्रभुपाद जी को देखो, हम लोग का गुरु जी का अनुगत समय। इसलिए कुल देव का अभिमान कैसे जाएगा, हजार चेष्टा करने से नहीं जाएगा, मैं हूं और मेरा ये कैसे ऐसे नहीं जाएगा। यदि ऐसे उत्तम वैष्णव हो उनके अनुगत में रह करके भजन किया जाए,
और ये वैष्णव का विचार होता है,
इसलिए तो इतना बड़ा लिख। इसलिए सबसे पहले भजन राज्य में ये आवश्यक है, अपने स्थूल को जो जितना ही दूर करता जाएगा और चीज अभिमान आता जाएगा, पहले गुरु जी का सेवक हूँ, वैष्णव का सेवक हूँ और फिर भगवान का सेवक हूँ, भगवान से भी बढ़कर के और भी कुछ चीजें हैं, भगवान के भक्तों का मैं सेवक, यह जिसमें भाव आएगा ये अभिमान दूर होता जाएगा। कभी यानी पारतिया रसे निरंतर राधा कृष्ण सेवा सुख लंबी गौरी दुरात अपाश्य स्वजनान सुखमर्थम कोटि सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशः वर्षन्तमेव सहजां सौख्यधारां शिराधिका चरण रेणुमहं भजामि। ये गोस्वामियों की यही रीति के अनुसार में ऐसे भजन किया जाता है। अभी हम लोग सुने, कुछ कुछ धारण करें जो हमारे पूर्व जो हमारे गुरु वैष्णव ने आचार्यों ने कैसे भजन किया, जैसे किसी दिन ऐसे लोग उत्पन्न हो जाए थी तब हमारा जीवन सार्थक हो। इसीलिए सुन, अभी इस अधिकार में अभी नहीं, अभी अभिमान पूरा है इस शरीर, अभी काम क्रोध लोभ मद मोह और नमापराग, इसके अतिरिक्त माधुर्य का दम्बरी में लिखे हुए वो सब अब अनर्थ और लय ये सबको समझना पड़ेगा, समझ करके इन सबको दूर करने की हम चेष्टा करें, तब हरि नाम में और हरि के कथाओं के सुनने में आसक्ति या रुचि उत्पन्न होगी, तब ये सब चीजें समझ। प्रसंग वर्षा हम लोगों ने इस ग्रंथ को आरंभ कर दिया,
वृंदावन के एक बाबा जी महाराज बोल रहे थे कि ये तीनों प्रकार के अनर्थ जो है इसको तो इससे तो हम बच सकते हैं, परंतु भक्ति उक्त अनर्थ यही सर्वनाश हो जाता
है। ठीक है, ठीक है। स्वजन संबंध सुख चतुर्वर्ग अर्थ सकल साधन छड़ी ज्ञानी अर्थ। इस जगत में जितने सुख हैं, लौकिक सुख, सगे संबंधियों से जो पाए जाने वाले सुख हैं, और प्रतिष्ठा इत्यादि का जो सुख है, यहाँ तक कि चारों वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक भी, मोक्ष को साधारण मत समझना भाई, इस जगत के एक थोड़ा फुंसी हो जाने पर भी न जाने कैसा हो जाता है, वो मुक्ति कितना लुभावनी है तो भी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं हम मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष पद पद पर हम चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि मोक्ष नहीं चाहता, मोक्ष भले ही हम कह दे जो मोक्ष नहीं चाहते, खुदा की निवृत्ति चाहते हैं कि नहीं, ये भी एक मोक्ष है। कोई रोग से निवृत्ति चाहते हैं कि नहीं, ये भी एक मोक्ष है। दुखों से हम मुक्ति चाहते हैं कि नहीं, हम सभी चाहते हैं। जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं, इसलिए अग्रह है मुक्ति, ये तो अनिवार्य है, इसमें आएगा, इसमें मुक्ष कहने से ही नहीं हो जाएगा, मुक्ति सभी चाहते हैं। तब इसकी लालसा को यदि छोड़ देगा सचमुच में, उसको ये प्राप्ति मिलती है। तो स्वजन संबंध सुख चतुर्भव अर्थ सकल साधन छेड़ी जानिया अनर्थ, इन सबको अनर्थ समझना चाहिए। यहां तक कि गौड़ीय वैष्णव में उन्नत अधिकार आने पर हम जो कुछ कर रहे हैं इसको भी अनर्थ समझ करके इसको भी छोड़, इसको भी समझने की चेष्टा,
जो कुछ कर रहे हैं
हम लोग अभी इस अवस्था में जो कुछ कर रहे हैं ये सब को भी छोड़ देंगे अनर्थ समझ करके, किंतु अभी खोल करके ये चीज को नहीं कहा जा सकता।
संसारम त्रिंगराशि देहम निजम भारवत,
इसको इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभी जो हम लोग रागानुगा भजन का अंग नहीं, इसलिए कहते हैं किंतु अभी हम नहीं करेंगे तो भजन में अग्रसर नहीं हो सकता। सबका एक स्तर, उस स्तर को पार करके खुद करके नहीं जा सकते, वो तो उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिस पर कि अहत्य की कृपा भगवान या उन भक्तों की है, उन्हीं लोगों के लिए ये संभव। जैसे अहत्य की कृपा बिल्व मंगल पर हो गई और उनको घर से निकाल करके ब्रज में पहुंचा करके, ऐसे क्रम दे, ये उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए संभव। इसलिए कहते हैं सफल साधन, इसलिए अभी जो साधन करते हैं उसको भी अनर्थ समझ कर। बहुत से लोगों को हमने देखा है ब्रज में रहते हैं, राधा कृष्ण का भजन करते हैं और गणेश जी की भी उपासना करते हैं। अब इसको अर्थ कहा जाएगा, अनर्थ कहा जाएगा या साधन कहा जाएगा, यदि छोड़ा कहें मत छोड़ दो तो उनकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अभी किसी से ये कहा जाएगा तुम द्वारका मत जाना, नहीं तो तुम्हारी ब्रज की भक्ति नहीं होगी, और जाने के लिए सब तैयार हम कहें मत जाओ, उनकी निष्ठा कैसी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, हमारे प्रति जो श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाएगी और भक्ति भी उनकी। इसलिए अभी हम जो जो कर रहे हैं ये भी उन्नत अधिकारी के लिए कम से एक स्टेप को छोड़ करके अगला स्टेप पकड़ करके फिर उसको पकड़ेगा, फिर उस पर फिर होगा ऐसे। इसलिए आचार्यों का अभिप्राय है जिस किसी भी स्तर पर हो उसको धीरे धीरे हम ऊपर उठाएंगे, और यदि एक ही बार खींच करके लाने की चेष्टा करेगा तो रबड़ की भांति वो टूट जाएगा, थोड़ा सा पड़ेगा इसके बाद में। इसलिए अपने अपने सत्य अनुसार में हम लोग बढ़ेंगे। सहज अद्भुत सौख्य धारावृष्टि करी राधा पदरे भजी श्री सदा, कृष्ण और कृष्ण के भक्त अहत की कृपा की वर्षा करके, अपनी करुणा की वर्षा करके, और उनके प्रति यह जो सौख भाव है, सौख भाव माने सखा सखी सभी कुछ इसमें आ गया, सौख भाव ये सभी उस धारा की दृष्टि करेंगे। धारा क्या है, वो सौख भाव उसकी वर्षा, और उसमें यदि किसी ने स्नान कर लिया, अभिषिक्त अपने को कर लिया, तो राधा पद रेणु भजी सिरे सदा, उसी को सिर पर धारण करके राधा जी की हम नित्य काल के लिए सेवा कर सकते हैं। आज वंशाकल पतितान जितना ही अनर्थ दूर होता जाएगा उतनी ही निष्ठा रुचि होगी, रुचि आसक्ति होगी। अनर्थ रहते समय अधिक अनर्थ रहने पर ये सब चीजें नहीं होती। नष्ट प्रायेश अभक्तेश नित्यम भागवत सेवा। जब धीरे धीरे अनर्थ दूर होने लगेगी तो भक्ति निष्ठ की होगी, साधन करते करते रुचि होगी और फिर आसक्ति में क्या चीजें होनी चाहिए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं। आसक्ति में जो आसक्ति युक्त भक्त लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, अभिमान परित्यज्य प्राकृत बपुर आदि अपने प्राकृत शरीर के सुंदर या लंगड़ा लूंढा कैसा है, कौन हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी और सांसारिक जो परिचय है, ये सब अभिमानों को दूर कर देता है वो आसक्ति वाला। और उसका अभिमान दो प्रकार से है, यथावस्थित देह में महाप्रभु जी का मैं किंकर, गुरु जी का किंकर, रूप सनातन जी का किंकर, और उन्हों के कृपा से जिस विषय में लोभ हुआ है उस लोगों में कृष्णदास कृष्णदासी ये अभिमान कहे। और जितना ही व्यक्ति कर्मी होगा, ज्ञानी होगा, संसार में इधर उधर कामों में व्यस्त रहेगा, उसको बाध्य है शरीर का ये अभिमान। जो नित्य निरंतर सब समय भगवत चिंतन किया करता है उसके लिए ये सब चीज संभव। इसलिए इन सब अभिमानों को छोड़कर कृष्ण कृपया गोपी देहे बजे बसाम्यहम्। मैं उन प्राकृत अभिमानों को छोड़ करके कृष्ण की कृपा से, और कृष्ण की कृपा माने यहाँ पर गुरु और वैष्णव की कृपा से, उन साधक जो रसिक वैष्णव है उनकी कृपा से गोपी देह में ब्रज में सब वास करूँगा, ये सब समय पावन करूँगा। राधिका चलित अनुचरी भूत्वा पार्थी अरसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्यां करामि। और तब मैं वृंदावन में रह करके राधा जी की अनुचरी दासी होकर परकीय भाव से राधा कृष्ण के विलास में सब समय में सेवा कर सकूं। सब समय इसकी चिंता उन लोगों को रहती है आसक्ति वाले। आसक्ति भी दो प्रकार की, एक वैधि भक्ति से ज्ञात आसक्ति और एक रागानुगा भक्ति से उत्पन्न। ये रागानुगा भजन के लिए भी है। हमारे किसी भी वैष्णव में आचार्य ने वैधि भक्ति के ऊपर में अधिक नहीं लिखा। वैधि भक्ति को भी बतलाया तो एक वैधि भक्ति इस रूप में लिखा है जिससे कि अपने आप के दिन चलते चलते रागानुगा के प्रति योग। ये भजन का रहस्य लिख रहे हैं। भजन का रहस्य जो नहीं जानेगा वो इन सब लाइन में नहीं आएगा, इसलिए ये सब भजन के रहस्य। हम लोगों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो स्थूल शरीर में स्थूल परिचय में अधिक आवश्यक क्रमशः इस चीज को भूल जाए। और मैं सब समय स्थूल शरीर ही रहे, मैं कृष्ण का दास, बस ये अभिमान कृष्णदास ही, ये अभिमान सबसे। ये कैसे होगा? जब निरंतर उसी का चिंतन होगा तब स्थूल देहादि से आत्मबुद्धि परिहरी कृष्ण कृपा से नित्य गोपी देह है। कृष्ण की कृपा से वो गोपी शैल ऐसे नहीं हो जाता। कभे आई परतिया रसे भारतीय से निरंतर राधा कृष्ण सेवा से सुबह विश्व ये सब हो गया था तभी मुखबंध के लिए इसको मैंने पा। कैसे होगा वो उसके लिए बतला रहे हैं। आशास्य दास्य ये भी हो गया। आशास्य दास्य विशुद्ध तीरे समाभाष्य च भाम जाय कदान वृंदावन कुंज विद्धेष्वहं नुराधे अतिथिर्भवेयम्। आशा अस्य दास्य मैं आशा करता हूँ। क्या आशा है? राधा और कृष्ण से या गुरु वैष्णव से सब समय यही निरंतर आशा रखता हूँ, स्तव स्तुति के रूप में करता हूँ कि विश्वभानु जाया तीरे में दर्शन विश्वभानु मैं विश्वभानु जाया तत् श्रीमती विश्वभानंदनी राधा कि दास्य हमें मिले। ये सब समय जब भजन करेंगे तब सब समय यही बात और कोई भाव आने नहीं। मैं विश्वानंदनी की दास बस यही है और कोई आशा रहे नहीं। और भानु जाया तीरे तो विश्वभानु नंदिनी उनकी लड़की और दूसरी भानु जाया तीरे सूर्य पुत्री जाया मैंने लड़की
विश्वभानु जाया
भानु जाया वहां पर विश्वभानु जाया दास्य विश्वभानु जाया
विश्वभानु जाया तीरे सूर्य पुत्र जमुनाया तीरे
विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका के दास्य की अभिलाषा रखकर सब समय भानु जाया तीरे सूर्य पुत्र जमुना के कालिंदी के तीर समान भाष्य में मैं वहाँ
चित्त को
वहाँ पर सब समय वास कर वहाँ पर वास करें मन के द्वारा और शरीर के द्वारा दोनों से सब समय जमुना के किनारे वास करते हुए यमुना के किनारे कहाँ? इंद्रप्रस्थ में ना, कहाँ? प्रयाग में। कहाँ पर बास करेंगे? यमुना का तीर्थ तो कालीनंद पर्वत से लेकर के यमुनोत्री से लेकर के बहुत दूर तक, किंतु नहीं यहाँ पर
राधा पदानंद धाम में,
वहीं पर हम, वहीं पर समाधाष्ट अच्छी तरह से खाली भांति से चित्त को स्थिर करके वैष्णव के, ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में वहीं रह करके कदानु वृंदावन वीथि स्वाम, कब मैं वृंदावन की वीथि में, ये वृंदावन में तो यहाँ पर तो वृंदावन में तो जमुना है, वृंदावन में और कहाँ है? सर्वत्र ही संत है ये खेलन वन इत्यादि, ये गांधी वन है, खेलन वन है, भद्रवन के निकट से आने वृंदावन को है, उन्हें सब चारों तरफ में चौरासी कोष ब्रह्मंडल में जहाँ जमुना के किनारे वहाँ पर राधा जी का जहाँ पर ये सुंदर सुंदर विलास हुए हैं, वहीं पर बीतीशु, बीतीशु मैंने कभी मैं वहीं पर विलास करूँगी। और यहाँ पर रघुनाथ दास जी प्रार्थना करते हैं तत्व मैं यमुना के किनारे कहीं रह करके और समय सब समय राधा जी की मैं दासी हूँ, ऐसी भावना करते हुए सब समय यही स्मरण करूंगा। और उसी समय में कब मेरा सौभाग्य ऐसा होगा जबकि श्रीमती राधिका जी उसी कुंजी गलियों में जहाँ मैं रहूंगी रहूंगा वहाँ कभी हमारे आंखों के सामने अतिथि होएंगी, अतिथि मैंने कोई तिथि नहीं, न जाने कब कभी सौभाग्य से जाती हुई दीक्षा कैसे, जैसे कि बिल्लु मंगल को दर्शन दे दिया गोवर्धन के, और कितने भक्तों को दर्शन दे दिया, कभी भी मैं मुझे दर्शन दे दी। और करने का ये भी एक अंतर में छिपा हुआ दूरदर्श्य है कि नित्य लीला में प्रवेश करके वहीं पर राधिका जी की हम सेवा करेंगे, उनकी राधा जी कृपा करेंगे, विश्वभान तुम्हारी भैव किन करी कालीन दनंदे नितिरे रब बास करी करुणा करी आराधे ये दासी पति वृंदा कवि कुंज पथे भैवे अतिथि, मेरे नेत्रों की अतिथि हुई माता तो बहुत दासी है। दिन रात ऐसे ही प्रार्थना, ऐसी भावना, और कोई भी सेवा काम करता है किंतु भावना नहीं कर रही। स्थवावली में लिखा है, स्थवावली में रघुनाथ दास ध्यायंतम सिखतिक्ष मौलिम अनिशम तन्नाम संकीर्तयन नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरं तं मंत्रवर्ज्यं जपन् श्रीराधा पदा दास्ये दस्यमेव परमाभीष्टं हृदाधारयन् कर्हिष्यन् तदनुग्रहेण परमाद्भुता नुरागोत्सवः। ध्यायन्तं निरन्तर ध्यायन्ते इनको सिखितुच्छ सिखितुच्छ को धारण करने वाले काम ध्यान करके क्या ध्यान करके स्वास्थ्य की लीलाओं का ध्यान करके एज ए मन जैसे है स्वास्थ्य की लीला माला की सबसे रघुनाथ दास गोस्वामी और गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि की रात भर जग रहे हैं क्या ध्यान करते हैं, बस उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हैं, चाहे महाप्रभु की लीला हो माले महाप्रभु जी की लीला करके इसका चिंतन, दिन रात इसके अतिरिक्त और कोई चिंता नहीं। हम लोग सवेरे उठ करके रुपया गिनते हैं, रुपया भी लेते हैं कि कितना रुपया है क्या है, और फल का जो ये हुआ उसमें घटी हुआ कि लाभ हुआ, और ये काम आरंभ किया है ये, और कहाँ से क्या हम करेंगे, इस अधिकार में नहीं। तो जब अधिकार आएगा उनकी चिंता होगी, जब सब समय इसी की चिंता होगी कैसे मिलेगा, तब ये सब चीजें अनिशम क्या ध्यानतम सखी पुरुषम हो गए, क्या ध्यान करेगा, देखेगा क्या ऐसे करेगा, बरहा पीड़ा विरामम मृगवद तिलकम कुंडला कांतकांडम पंजाक्षम सर्वदक्षम नवभक्षम वर्षचूडम शरण्यम त्रिभंगई भंगी मंगम ज्योति वस्तकेश्यादिशूरम वंदे नंद सुन मधुरस्तम भोजमा। देखेंगे जैसे एक चित्र है, एक चित्र है, एक श्याम सुंदर मूर्ति हाथों में बंसी लिए हुए है, और सिखी पुच्छे यहाँ पर अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित, और देखा जी गोपियां वहां पर चारों तरफ से उनको देख कर ठीक कर, पास में गायें भी होंगी मुरली कृष्ण के हाथों में, क्या भक्त कश्याद सूरत, अरे वही वही है जिन्होंने केसी और सब जितने कम सब और जितने अशुभ थे उसको भस्म किया, वही ये श्याम सुंदर हमारे हाथों के खड़े हैं। इसी को तो कहेंगे ना जैसे ध्यान तंश की पुच्छ मौली अनिशम, बस इसी मूर्ति में लगा दो ध्यान सब समझ देते हैं, तो क्या होगा, इसको सब समय ध्यान कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हमने बैठे और उनको ध्यान कर किससे नहीं, ये मंत्र उपासन हो ऐसे जगह राधा जी भी हैं गोपियां भी हैं, तो सब ठीक है, किंतु एक इसी को दिन रात ध्यान
हो जाएगा जैसे
ऐसा ही पहले साधक का ऐसा ही करेगा, किंतु इससे जुगल प्रेम की सिद्धि है। ये छवि देख रहे हैं मूर्ति जैसे भक्ति में ठाकुर हैं ऐसे नहीं, हमारे गोस्वामियों ने कृति सुंदर इत्यादि में हमारे रूप गोस्वामी ने जैसा वर्णन किया कर्मशः एक लीला में ही कितनी विचित्र विराज है, बाल्य लीला में भी वैसे ही है, पवन लीला में भी वैसे है, और उम्र किशोर लीला में भी उनकी लीला है, एक दोनों बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत के श्लोक में भी रहस्य संविलम हित योगयम रहसितानं प्रेम वीक्षणं ये मंत्र में उपासना नहीं है, देखो इसमें कितनी विद्याओं का रहस्य संविदम शिशु, रहस्य संविदम मैंने क्या हुआ दोनों बातचीत, क्या बातचीत कर रहे हैं घंटों पर घंटे बातचीत कर रहे हैं, बिना ओर छोर की बात कर रहे हैं, ओर छोर माने
सेवा से बात
ना,
इधर उधर कोई बात संलग्न नहीं है,
असंलग्न उन्हें कोई ठीक ना है, कोई ठीक नहीं ये क्या बात कर, जब भी जो मन में आ जाता है बस वही, और उसी में कभी परस्पर खंडन बंडन और तरह तरह की बातें होती है, रहस्य संविदम हृदयोदयम रहस्यतानं, रहस्यतानं मैंने पहले दोनों में ऐसी ऐसी बातें हुई, ये दोनों में कुछ विवाद हो गया, प्रेम कलह हो गया, और प्रभसित आनंद कृष्ण ने मना दिया करके आनंद हो गया, हंसने लगी श्रीमती राधिका जी या गोपियां भी हंसने लगी, कृष्ण भी हंसने लगे, प्रभसित आनंद प्रेम अभिभूषण प्रेम विक्षण में कितनी सब दिया आंखों से ही सभी बातें बात कर रही, ये सब बातें हमारे मन में मोह तो उसी को कह रहे हैं ध्यानम तम से कि पुच्छ मौलि, कृष्ण को ध्यान करना है तो ऐसे ध्यान करना है, ऐसे नहीं जो एक जड़ मूर्ति है या जैसे शिव विग्रह को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, सब समय 24 घंटा इसी अभय में, यही तो देखना राधा जी खड़ी हैं वो भी, किंतु रसिक भक्त लोग इसी में हजारों तरह की चीजें दर्शन कर रहे, बातचीत भी कर रहे हैं, विलास भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ इसी में दर्शन, तो इसलिए कह रहे हैं सिखी पुच्छ मौनी का ध्यान कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे मैंने कहा ध्यान करते सिखी पुच्छ मौनी का दिन रात कार्य में कहां निकल गया, जुग जुग अंतर हो जाएंगे, उनका ध्यान समाप्त हो जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा, अभी हम लोगों का मन ऐसा नहीं, अभी शुद्ध नहीं है, क्यों शुद्ध नहीं, विषय को नहीं छोड़ता ये संसारिक, इसलिए वही चीजें जो प्रधान है वही चीज मिल जाती है, वो सब चीजें इसलिए कहते हैं, और उसको परिपुष्ट करने के लिए तन नाम संकीर्तन उन्हीं नामों का संकीर्तन होता है, उन्हीं लीलाओं से संबंधित नमामि स्वरूप सच्चिदानंद कुंडलम आलोल चंद्र।